हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिविका ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की थीं कि बाहर से आवाज आई। उसे लगा कि शायद कुछ गिरा है। उसने मन ही मन कहा, अभी भी कोई है क्या? मुझे तो लगा था कि सब लोग चले गए हैं। इतना सोचते हुए शिविका अपनी जगह से उठी और घड़ी देखी। लगभग 9 बजने वाले थे। वो केबिन से बाहर निकली। एक साइड की लाइट ऑन थी। वहां करण बैठा था और उसकी डेस्क के आगे एक लड़की खड़ी थी, उससे बात कर रही थी। शिविका ने ध्यान से देखा तो वो निधि थी। करण उससे बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, लेकिन जो कुछ वो बोल रही थी अपना काम रोककर हाँ या नहीं में जवाब दे रहा था और फिर से काम में लग जाता था। ये देखकर शिविका आगे बढ़ी और करण के पीछे खड़ी हो गई। बारी बारी से दोनों की तरफ एक नज़र डालते हुए बोली, तुम दोनों अभी तक वापस नहीं गए? और निधि, तुम्हारा तो कोई काम नहीं बचा है ना शायद, क्योंकि तुम तो अपना बैग पैक करके यहाँ खड़ी हो। एनी स्पेसिफिक रीज़न? शिविका ने जानबूझकर ये सवाल किया, क्योंकि ऑफिस में उड़ती अफवाहों से उसे पता था कि निधि किस तरह करण के आगे पीछे लगी रहती है और उसे प्रपोज भी कर चुकी है, लेकिन करण ने मना कर दिया है। वो उसे ज्यादा भाव नहीं देता, लेकिन अभी इवेंट की वजह से उसे उसके साथ काम करना पड़ रहा था और निधि इसी बात का फायदा उठाते हुए करण से बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिविका की आवाज़ सुनकर निधि हड़बड़ा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिविका ऐसे एकदम आकर ये सवाल करेगी, इसलिए उसने घबराकर कहा, नहीं मैम, मेरा काम हो गया है और मैं बस करण की हेल्प, हाँ मैंने सोचा करण की हेल्प कर दूं ताकि वो भी जल्दी घर जा पाए। निधि ने जल्दबाजी में ये झूठा बहाना बनाया और मन ही मन दुआ करने लगी कि करण कुछ उल्टा सीधा ना बोले। निधि की बात सुनकर शिविका सीरियस टोन में बोली, ओह आई सी, करण की हेल्प, काफ़ी हेल्प करवा दी होगी ना तुमने। देखो तभी तो वो इतनी जल्दी घर चला जाएगा। देखो रात के 9 बज रहे हैं, जल्दी ही तो है ना ये। करण ने उन दोनों के बीच कुछ नहीं बोला। वो निधि को पहले ही बोल रहा था कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन निधि कह रही थी कि वो करण के लिए रुकी हुई है, जबकि करण नहीं चाहता था कि वो उसके लिए रुके। शिविका की बात पर निधि ने सफाई देते हुए कहा, नो मैम, मैंने, मेरा मतलब है मैंने करण को ऑफर किया कि मैं हेल्प कर देती हूँ और यही बोल रही थी, क्योंकि मेरा काम अभी फिनिश हुआ तो जाने से पहले मैंने सोचा देख लेती हूँ, अगर ज्यादा काम बाकी हो तो मैं उसकी हेल्प कर दूँ, यही बोला था ना मैंने, है ना करण? निधि ने थोड़ा अटकते हुए करण की तरफ देखकर शिविका के सवालों का जवाब दिया। वो झूठ बोल रही थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शिविका के सामने उसे बचाने के लिए करण उसका साथ देगा। अगर साथ नहीं देगा तो भी वो सीधे तौर पर मना नहीं करेगा, जैसे चुप है वैसे ही रहेगा। लेकिन निधि की उम्मीद टूट गई जैसे ही करण ने कहा, और मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए मना भी तो कर दिया था ना जैसे ही तुमने ये कहा। मैंने कहा कि तुम चली जाओ, इतना लेट हो गया है और मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी तुम यहाँ पर ही खड़ी हो, मुझे नहीं पता क्यों। करण ने इतना कहा और फिर अपने सामने रखे सिस्टम की स्क्रीन की तरफ देखने लगा। शिविका करण के पीछे दोनों हाथ बांधकर खड़ी थी, लेकिन वो निधि की तरफ ही देख रही थी। शिविका की नज़रें महसूस करके निधि का गला सूख गया। उसने अपना थूक निगलते हुए मुश्किल से कहा, सॉरी सॉरी मैम, वो मैं बस हेल्प ही कर रही थी, लेकिन करण वो मुझे गलत तो समझता है और मैं इतना बोलते हुए निधि नीचे सिर झुकाकर जमीन की तरफ देखने लगी। शिविका ने कहा, ये मैं करना बंद करो और जाओ, कल सुबह जल्दी आना है, नहीं तो फिर तुम ही हमेशा सबसे लेट होती हो, और जब उसने मना कर दिया तो फिर क्या ज़रूरत है किसी को भी ज़बरदस्ती हेल्प ऑफर करने की। निधि ने इसके आगे शिविका से कोई बहस नहीं की और बोली, आई एम सॉरी मैम, मैं जाती हूँ, बाय, गुड नाइट। इतना बोलकर उसने एक नज़र करण की तरफ देखी, लेकिन करण ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वो उसी तरह काम में लगा हुआ था, बस हल्का सा मुस्कुराया। शिविका उसके पीछे खड़ी थी, इसलिए वो करण को मुस्कुराते हुए नहीं देख पाई। निधि वहां से गेट की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही शिविका ने थोड़ा सा आगे बढ़कर पूरे ऑफिस में इधर उधर देखा, ये कन्फर्म करने के लिए कि निधि के अलावा कोई और भी तो वहां पर रुका हुआ नहीं है। फिर वो जतिन के केबिन की तरफ भी गई और झांक कर देखा, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ करण और उसके अलावा। ये बात कन्फर्म होते ही शिविका ने करण के सामने आकर स्क्रीन के कीबोर्ड पर चलता हुआ उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, रहने दो, बस करो, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ करण, बाकी लोग भी हैं वे देख लेंगे, और बाकी काम। शिविका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही करण ने बैक बटन पर टच किया और वो पेज क्लोज करते हुए बोला, ओके मैम, जैसा आपका ऑर्डर। और इतना बोलते हुए उसने वो टैप टेबल पर रखा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने शिविका की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा और अपना सारा सामान समेटने लगा। शिविका को उसका ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो अकेले में तो कभी भी उसे मैम नहीं बुलाता, हमेशा नाम लेकर बुलाता है, और ये इस तरह से ऑर्डर वाली बात उसने बोली, वो उसे कोई ऑर्डर नहीं दे रही थी, बस उसे करण की फिक्र हो रही थी कि कहीं ज्यादा काम करने की वजह से उसकी हेल्थ पर असर ना हो, इसलिए उसने मना किया। लेकिन करण का ऐसा रिप्लाई सुनकर शिविका का दिल टूट गया। शिविका ने काफी मायूसी से धीमी आवाज में कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम करण? वो दो दिन पुरानी बात को लेकर अभी भी नाराज हो गया मुझसे। अच्छा, इसीलिए ही तुम केबिन में भी नहीं आए मेरे साथ काम करने, और तुमने तब से मुझसे कोई बात भी नहीं की है ना, मेरा मतलब है पर्सनल। शिविका की ये बात सुनकर करण ने कहा, नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप भी इस बारे में इतना मत सोचिए। वैसे भी कल होने वाला इवेंट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी हम उस पर ही फोकस करते हैं, बाकी बातें बाद में। करण ने एकदम प्रोफेशनल होकर ये बातें बोली और उसकी आंखों में या उसकी बॉडी लैंग्वेज से शिविका के लिए कोई भी फीलिंग या एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। इस बात से शिविका को दिल में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। वो कभी भी करण को इस तरह से नहीं देखना चाहती थी और देख भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने आगे आकर करण का हाथ पकड़ लिया, जबकि करण अब तक वहां से दूसरी तरफ मुड़ चुका था। शिविका ने पीछे से ही उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे से ही गले लगाती हुई बोली, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने तुम्हें अंकिता के सामने डांट दिया था, तुम इसीलिए ही नाराज होना। करण, प्लीज ऐसे बिहेव मत करो, इट हर्ट्स। इतना बोलते हुए शिविका थोड़ी सी इमोशनल हो गई और करण बस उसे टीज कर रहा था, क्योंकि इन दो दिनों में उसे सच में मौका नहीं मिला था उससे बात करने का, तो उसने बस नाराज होने की एक्टिंग करना जारी रखा। पहले तो शिविका ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इन सबके बीच वो भी काम में लगी हुई थी, लेकिन अभी अकेले में उसके इमोशंस इस तरह बाहर आते देखकर करण ने उसे और परेशान करने के बारे में नहीं सोचा और पीछे मुड़कर उसके लिए एक गाल पर हाथ रखते हुए बोला, अरे अरे, रो रही हो क्या, इमोशनल हो, लेकिन क्यों? मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, सच में। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो शिविका। इतना बोलते हुए उसने शिविका के चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाया। शिविका ने अपनी पलकें ऊपर करते हुए उसकी तरफ देखा और बहुत उम्मीद से सवाल किया, तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो ना करण? और किसी भी बात को लेकर तुम्हारे मन में कुछ भी हो तो प्लीज तुम बोल दो।
उसकी बात सुनकर करण के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, रियली, तुम वही लड़की हो जिसने अभी अभी उस निधि को डराकर भगा दिया, और पता है उसका तो गला भी सूख गया था। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन तुम पक्का डेंजरस लग रही होगी, और अब देखो जैसे लग रहा है काव्या की मम्मा नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन हो, ऐसे आंखों में आंसू भर के खड़ी हो मेरे सामने, ये ड्यूएलिटी लाती कहाँ से हो? करण ने हंसते हुए कहा, तो शिविका ने हल्के से उसकी बाह पर मारा और फिर उसकी चेस्ट पर अपना सिर रख लिया। करण को उसके इतना करीब आते ही अपने पूरे बॉडी में एक अलग ही एहसास हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल काफी जोर से धड़का। ये फीलिंग उसके लिए पहली दूसरी बार ही है और सिर्फ शिविका के करीब होने से ही उसे ऐसा फील होता है, लेकिन फिर भी उसने इस बारे में इतना नहीं सोचा क्योंकि उसे याद है कि उन दोनों का एक रिश्ता है और वे दोनों एक दूसरे के होने वाले जीवन साथी हैं। उसने शिविका का एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और दूसरा उसके सिर पर, और हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। करण के करीब आकर शिविका को फिर से उसकी वो अपनी तरफ खींचने वाली महक महसूस हो रही थी जो उसे पागल कर देती है, लेकिन इस वक्त वो खुशबू उसे बहुत सुकून दे रही थी और वो उसके सीने से लगकर खड़ी थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वे दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे, पता नहीं कितनी देर तक खड़े रहते अगर शिविका का फ़ोन न रिंग हुआ होता तो। शिविका का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनकर उन दोनों का ध्यान मोबाइल फ़ोन की तरफ हुआ और दोनों ही थोड़ा सा झेपते हुए एक दूसरे से दूर हो गए। शिविका ने इधर उधर देखते हुए कहा, मेरा मोबाइल, मेरा फ़ोन कहाँ पर है? और फिर उसने रिंगटोन की आवाज़ की तरफ देखा तो उसे वहीं टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन मिल गया, जो अभी आते हुए उसने वहाँ पर ही रख दिया था जब वो निधि से बात कर रही थी तब। और उसने मोबाइल फ़ोन उठाया तो देखा कि घर से फ़ोन था। वो समझ गई कि ज़रूर ज्योति का ही फ़ोन होगा, क्योंकि बाकी घर से उसे जल्दी कोई भी कॉल नहीं करता है। क्रमशः